बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सब संतों की जय। परमात्मा और गुरुजनों की असीम कृपा से हम लोग विचार कर पा रहे हैं। कठोपनिषद में कि सौभाग्य का अवसर है ये पितृपक्ष में जो सुनने का और सुनाने का विधान है कठोपनिषद, इसका अवलोकन हम लोग कर पा रहे हैं और सौभाग्य का अवसर ये भी है कि सामकालीन सत्र में आप लोग श्रवण कर रहे हैं जो वैराग्य का सर्वोच्च ग्रंथ योग वशिष्ठ का। तो यहां पर नचिकेता को जमराज जी सर्वप्रथम प्रतिबंधक को बताया। प्रतिबंधक जब तक हो कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है। तो द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली में प्रथम मंत्र में प्रतिबंधक बताया। धीर बनना होगा, इंद्रियों का निग्रह चाहिए और सबसे बड़ी बात बताई अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा यदि हो तीव्र तो परमात्मा की कृपा भी स्वभावतः हो जाती है, बाकी साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इसी बात को द्वितीय मंत्र में बताया जिसके अंतकरण में अमृतत्व की इच्छा न हो उसका मन तो बाहरी दौड़ेगा। संसार का परीक्षा नहीं किया तो उसका मन बाहरी दौड़ेगा, ये बताया द्वितीय मंत्र में। पराचक कामन अनुयंति बालास, उसको तो बालक समझना चाहिए जो मन के रस में रमा है शास्त्र की बात को गुरु की बात को सुनने पर भी ग्रहण नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले धीर बनना पड़ेगा। व्यवहार काल में भी परमात्मा का चिंतन तब कर सकता है यदि वो धीर बने, धैर्य को प्राप्त करे। तो उसके बाद जगराज ने बताया कि यही तुम्हारा परमात्मा तत्व है, एतत् वैतत् तृतीय मंत्र में। जिस परमात्मा से, जिस साक्षी चेतन से सारे विषय रूपादि जाने जाते हैं, जागृत के है, स्वप्न के है, सुषुप्ति का आनंद भी है, ऐसे कोई पदार्थ न हो जो परमात्मा से प्रकाशित न होता हो। परमात्मा चेतन से सब प्रकाशित होते हैं, जिससे प्रकाशित होते हैं वही तुम्हारा स्वरूप है, एतद् वै तत्। ऐसा परमात्मा का ज्ञान साधक के लिए करा जाता है। अभी कहते हैं भगवान भाष्यकार यहाँ पर चतुर्थ मंत्र के ऊपर, जिसके पास पुस्तक है आप लोग देख सकते हैं, द्वितीय अध्याय प्रथम बल्ली चतुर्थ मंत्र। भगवान भाष्यकार लिखते हैं यह आत्मतत्व ऐसा है कि अत्यंत सूक्ष्म है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी उसको जानना अत्यंत कठिन होता जाता है, इसलिए बोलते हैं दुर्विज्ञेयम्, इसका ज्ञान करना अत्यंत कठिन है। जिसमें जितने गुण धर्म रहते हैं वो उतना स्थूल होता है और इसको जानना सरल होता है, लेकिन जिसमें जितने गुण धर्म कम होते जाएंगे उसको जानना कठिन होता है, और जिसमें किसी प्रकार का गुण धर्म ही ना हो तो फिर उसकी सूक्ष्मता अत्यंत होगी। इसलिए भाष्यकार ने लिखा है अति सूक्ष्मता दुर्विज्ञेयम्, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसको जानना कठिन है। इसलिए जानेंगे कैसे, सबसे पहले तो चित्त की शुद्धि होनी चाहिए, इसी बात को समझना पड़ता है। एक जगह पर श्रुति ने कह दिया कि अवांग मनसो गोचर, वाणी और मन का विषय ही नहीं है, और एक जगह पर बोल दिया मनसा एव अनुद्रष्टव्य, और परमात्मा का दर्शन मन से होता है, तो दो बात कैसे विरुद्ध बात बोल दिया श्रुति ने। तो समझना चाहिए चित्त यदि शुद्ध न हो तो ऐसे साधक के द्वारा परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, और चित्त जब शुद्ध हो जाएगा दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी, तो ऐसा यदि मन हो तो परमात्मा का दर्शन संभव है। इसलिए भगवती श्रुति बता रही है जमराज के मुख से चतुर्थ मंत्र में देखा जाए, सपनांतं जागरितांतं चोभो येनानुपश्यति महांतं विभुमात्मानं मत्वाधीरो न शोचति। एक होता है जागृत, जागृत अवस्था को सब जानते ही है, जहां पर घटपटादि का ज्ञान चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा होता हो उसको कहा जाएगा जागृत, और जब इसको छोड़ करके चला जाएगा दूसरी अवस्था में तो वहां पर मन से ही सारा का सारा व्यवहार होता हो तो उसको कहा जाएगा स्वप्न। तो जागृत में भी घटपटादि का ज्ञान हो रहा है जिससे, और स्वप्न में जाते हैं तो स्वप्नों का ज्ञान भी होता है जिससे। अच्छा, तो आदमी स्वप्न में क्यों जाता है, तो इसके ऊपर भगवान भाष्यकार मांडुक्य उपनिषद में कहा है, तो जितने भी भोग होते हैं पूर्व पूर्व कर्म के कारण होते हैं, जैसा जैसा कर्म फल देने लगेगा ऐसा ऐसा आपको भोग मिलेगा। इसलिए किसी किसी व्यक्ति को भ्रांति हो जाती है, हमने तो जीवन भर कोई पाप तो किया नहीं, हमने तो किसी का अनिष्ट किया नहीं, तो हमारे जीवन में दुख ही दुख क्यों है। इसलिए परमात्मा जो है अन्याय कर रहा है, तो ऐसा नहीं समझना है। जिसमें सुख हो रहा है उसमें तो कहते हैं भी परमात्मा की कृपा है, हमने अच्छा कर्म किया है इसलिए हमको सुख मिल रहा है, लेकिन जिसमें दुख मिल रहा है तो इस बात को नहीं समझ पाते हो, पहले तुमने जो पाप किया है उसका फल कौन भोगेगा? भोगना तुमको ही है। भाई मान लो भंडारा होता है, साधु को भोजन कराते हो, तो बाल्टी में पहले भरना पड़ता है ना। तो मिठाई भरे हो तो मिठाई निकलेगी बाल्टी से, दाल हो तो दाल निकलेगी, है ना। मान लो आप दाल भरे हो और चलाते समय बोलोगे मीठा राम रसगुल्ला राम, तो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी प्रकार चित्त रूपी बाल्टी में हम भरे हैं मान लो कि पाप रूपी दाल, तो क्या मिलेगा? पाप का फल दुख ही मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा? तो ऐसा समझना चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकार ने मांडुके में लिखा है, जब तक ये कर्मा फल दे रहे हैं तब तक उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। तो जागृत कालीन भोग को प्राप्त कराने वाला जब कर्म समाप्त हो जाएगा, फिर सपना में जाएगा हो, और सपना में वही भोग होगा जो कर्म फल दे रहा है। इसलिए चाहने से न चाहने से नहीं होता है, जो कर्म फल देने के तैयार हुआ ऐसे ही आपको भोग मिलेगा। इसलिए अगर शरीर में भी ऐसा होगा, अगले शरीर में जो कर्म फल देने वाला है उसके अनुसार ही आपको शरीर मिलेगा। यद्यपि अनेक कर्म है, अनेक जोनी में हम गए हैं और अनेक जोनी में जाकर के जो हम कर्म किए हैं उस कर्म का संस्कार तो सब पड़ा है। इसलिए भगवान व्यास जी बहुत विचार किया है योग सूत्र के भाष्य में, जैसे ब्रह्म सूत्र भगवान व्यास ने लिखा तो उसी ने ही योग सूत्र के ऊपर व्यास भाष्य लिखा है। उस भाष्य का नाम व्यास भाष्य है। तो वहां पर खूब विचार किया है कि ये जो अंतकरण है वो तो एक ही है, है ना। अंतकरण नहीं बदलता है, किसी भी जोनी में जाओ अंतकरण तो यही रहेगा, नहीं बदलेगा। जैसे सुषुप्ति में जाते हो तो ये जागृत में जो था वही अंतकरण रहता है, और लौटने पर भी दूसरा अंतकरण नहीं आ जाएगा, वही आएगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार दूसरे शरीर में जाएंगे तो यही अंतकरण रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर यही रहेगा। तो सूक्ष्म शरीर एक होने के कारण अनेक पाप पुण्य रूपी कर्म है, उसका संस्कार पड़ा है, रहने पर भी सभी संस्कार नहीं जगेगा, है ना, नहीं जगेगा। पहले मान लो हम पशु बने हैं और उस पशु कर्म से पहले मनुष्य जन्म रहा होगा, तो मनुष्य के बाद पशु हो गया किसी कारण से जड़ भरत की तरह, फिर अभी हम मनुष्य बन गए, है ना। तो पहले जन्म में जो पशु योनि में गए थे उसका संस्कार अभी भी है, तो अभी रहने पर भी वो संस्कार नहीं आएगा अभी, तो मनुष्य का संस्कार ही आएगा, है ना। यदि पशु का संस्कार आ जावे तो फिर जो है कच्चा मांस खाने लगेगा फिर, है ना। तो बकरी जूने में गया तो वही संस्कार आ जाएगा, तो फिर घास खाने लगेगा। इसलिए उस कर्म को जानने वाला कौन होगा भाई? वो परमात्मा है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने, व्यास भाष्यकार ने ये विचार किया है। इसलिए सपनों में जाएंगे तो वही भोग होता है जो कर्म फल देने वाला है, आप चाहो अथवा न चाहो। तो एक हो गया जागृत, एक हो गया स्वप्न। लेकिन ध्यान में रखो, उसको स्वप्न इसलिए बोलते हैं कि जागृत की दृष्टि से, जिस समय हम स्वप्न को देखते हैं उस समय ये मालूम नहीं पड़ता है कि हम स्वप्न को देख रहे हैं। आप लड्डू खा रहे हो तो ये मालूम नहीं पड़ता है कि मैं स्वप्न का लड्डू को खा रहा हूं, वास्तविक लड्डू को खा रहा हूं, उसको सपना इसलिए बोलते हो, उड़ने के बाद पता लगता है कि हम सपनों में गए थे। ठीक इसी प्रकार सुषुप्ति में जाने पर भी ऐसा होता है, उसमें मालूम नहीं पड़ता कि मैं गाढ़ नींद में सो रहा हूं, ये उड़ने के बाद मालूम पड़ता है कि मैं गाढ़ नींद में सोया था। इसलिए जितनी भी अवस्था है, ये जागृत है, सपना है, सुषुप्ति है,
ये सब जो है जागृत की दृष्टि से। इसलिए मांडुक्यकार भगवान ने इसके ऊपर बड़ा विचार किया।
इसलिए अवस्था त्रय का परीक्षण, प्रत्येक दिन तो तीन अवस्था आती है, लेकिन हम लोग जो है उसका परीक्षण नहीं करते। परीक्षण जब नहीं करोगे, विचार जब नहीं करोगे, जीवन ऐसा जाएगा, लेकिन ज्ञान विवेक नहीं हो सकता है। इसलिए विवेक चुड़ावे में कहते हैं अतो विचार कर्तव्य, इसलिए साधक को विचार ही करना चाहिए, नहीं तो आत्मा अनात्मा अवस्था अवस्था वाले का विवेक नहीं हो सकता है। तो जागृत को भगवान ने इसलिए बनाया कि तुम सपनों दृष्टांतों को लेकर के विचार करो, कि सुसुप्त के लेकर के विचार करो, इसलिए जागृत को बनाया। सपनों को इसलिए बनाया कि सपनों को दृष्टांत मान करके जागृत में ये विचार करना है कि दिखाई देने पर भी वास्तविक नहीं हो जाता है। भगवान ने सपनों को इसलिए बनाया। ठीक इसी प्रकार जागृत में जैसे सपनों में दिखाई देने पर भी वास्तविक नहीं हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से जागृत दिखाई देने पर भी वास्तविक नहीं होता है। सपनों को भगवान ने इसलिए बनाया। तो उत्पत्ति होने पर भी वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती। सपनों का लड्डू को बनाया तो बनता हुआ मालूम पड़ने पर ही वास्तविक बनता नहीं है। ठीक इस बार आप लोग जोग वशिष्ठ में सुनोगे, सृष्टि वास्तविक कुछ होती नहीं है, जितना भास रहा है, जितने काल तक भास रहा है, तब तक है वो, हो गया ना, ये ऐसा है। इसलिए भगवान ने सपनों को बनाया कि सपनों को दृष्टांत मान करके जागृत काल में विचार करना है। तो सपनों को भी छोड़ दिया, और सपनों को छोड़ेगा कब, जब सपनों को भोग देने वाला पाप पुण्य कर्म जब समाप्त हो जाएगा, है ना? अथवा समझ लो मन रूपी बैटरी जब खत्म हो जाएगी, चार्ज जब खत्म हो जाएगा तो मन रूपी बैटरी का चार्ज सुसुप्त में होगा। इसलिए कितना बढ़िया भी लड्डू खाओ सपनों में, कितना बढ़िया भी सपनों देखो, तो मन थक जाएगा, तो थकावट को दूर करने के लिए सुसुप्त में जाना पड़ता है। ये कह रहे हैं देखो जागरितांतम सपनांतम, जागृत कालीन जितने भी भोग है, सपना कालीन जितने भी भोग, जिससे भोगा जा रहा है, भोग दूसरा कुछ नहीं है, तो रसगुल्ले के रस का भान होना यही रस का भोग हो गया ना भाई। तो इसलिए नैया के लोग बोलते हैं सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, सुख का ज्ञान होना, दुख का ज्ञान होना यही भोग है, दूसरा कोई भोग नहीं होता है। तो ज्ञान तो प्रकाश तो किसी बुद्धि से नहीं होता है, बुद्धि जो है रूप घटपट आदि को प्रकाशित नहीं कर सकती है, बुद्धि प्रकाशित इसलिए करती है कि बुद्धि में है चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, इसलिए चेतन से प्रकाशित होता है, ये बात कह रहे यहाँ पर। ये न अनुपश्यति, ये देखो जो चेतन है ब्रह्म, वो ब्रह्म अपने आप भासता है, वो संप्रकाश होने के कारण उसका जब संबंध हो जाता है बुद्धि के साथ, तो बुद्धि भी प्रकाशित कर देती है, अपना अंतःकरण प्रकाशित कर देगा। तो ये हो गया सुषुप्ति। देखो
और सुषुप्ति भी बहुत विलक्षण है कि सुषुप्ति को भगवान ने इसलिए बनाया कि सुषुप्ति को दृष्टांत मान करके ये विचार करना है कि बिना विषय से भी सुख होता है, बिना विषय से भी सुख होता है ना। इस बात को समझने के लिए भगवान ने सुषुप्ति को बनाया। ठीक इसी प्रकार से जागृत में जो हमको आनंद मिल रहा है विषय से, वो वास्तविक विषय का आनंद नहीं है, वो आनंद तो अपना आत्मा का है, इसलिए सुषुप्ति है। तो सुषुप्ति को लेकर के विचार करना है, सुषुप्ति को लेकर ये भी विचार करना है कि सुषुप्ति में सबका आनंद एक ही होता है। कोई राजा भी खा करके बढ़िया भोजन कर सो गया, और कोई गरीब आदमी भी सूखी रोटी खा करके सो गया, तो दोनों तो सोए लेकिन दोनों का जो आनंद है समान ही होता है, अलग अलग नहीं होता है ना। इसलिए उड़ने के बाद दोनों का अनुभव एक ही होता है। राजा भी उड़ करके बोलता है कि बड़े सुख से सो जा, कुछ नहीं जाना बोलता है, और सूखी रोटी खा करके गरीब जो आदमी है वो भी बोलता है उड़ करके, मैंने कुछ नहीं जाना। इसलिए हुआ ये कि राजा का स्वरूप और गरीब का स्वरूप एक ही है। राजा का स्वरूप आनंद, गरीब व्यक्ति स्वरूप का आनंद तो एक ही, अलग अलग नहीं हुआ। ये सुषुप्ति को दृष्टांत मान करके समझना है हमको, और ये भी समझना है कि जागृत में जो हम अपने आप को मनुष्य समझ रहे हैं, अपने आप को गृहस्थ समझ रहे हैं, अपने आप को महात्मा समझ रहे हैं, ये अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो वास्तविक स्वरूप होता तो हमेशा रहता, समझ में ना। इसलिए दृष्टांत को ठीक ठीक समझना है, क्योंकि दृष्टांत के आधार पर ही परमात्मा को समझ सकते हो, और कोई उपाय तो है ही नहीं। तो जागृत काल में जो हम अपने आप को समझ रहे हैं मनुष्य आदि, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप यदि होता तो हमेशा रहता, स्वप्न में जाते तो ये रहता नहीं, और सुषुप्ति में जाते हो तो राजा राजा नहीं रहता है अभी, है ना, और गरीब भी गरीब नहीं रहता है, दोनों समान हो गए, दोनों समान हो गए। तो माता माता नहीं रही, पिता पिता नहीं रहा, सब समान हो गए। तो ये समझना है। ठीक उसी प्रकार से जागृत में भी समझना है, जागृत में समझना है। जैसे कि मान लो, कल शायद बताया था, जैसे पिता का शरीर छूट गया हो तो पिता के शरीर को लेकर के श्मशान में जाते हैं, और कोई आकर के बोल दिया भाई ये कौन है, तो मेरे पिता बोलेगा नहीं बोलेगा, फिर तुम्हारे पिता कहाँ गए हाँ, तो क्या बोलेगा, स्वर्ग बोलेगा नहीं तो बैकुंठ बोलेगा। और कहीं भी जावे हो हाँ, तो नरक में जावे तभी बोलेगा कि स्वर्ग गए, स्वर्गवास हो गया, नहीं तो बैकुंठ बोलेगा, बैकुंठ बोलना होगा है ना। तो नरक में जाने पर ही बैकुंठ बोलना पड़ता है ना, और बोलना भी चाहिए भाई, इस जन्म में नहीं गया तो दूसरे जन्म में जा सकता है ना, उसकी उन्नति हो उसकी अधोगति हो ऐसी आशा किसी को नहीं करनी चाहिए, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा आइए, कोई भी हो है ना, तो प्रार्थना तो परमात्मा से ऐसी करनी चाहिए, बोलना भी चाहिए कि कहाँ गए, बैकुंठ गए, नरक में गए, ये नहीं बोलना है, परंपरा नहीं है। तो देखो, तो पूछा भाई ये कौन है, तो पिता नहीं बोलता है, ये तो पिताजी का शरीर है ना। फिर पिताजी कहाँ गए, गए बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पिता का स्वरूप शरीर नहीं है,
यदि होता तो ये पिताजी बोलना चाहिए ना फिर। ठीक, इसी प्रकार जागृत में हमको अनुभव करना है ये जो दिखाई दे रहा है ये, इससे भले ही आप व्यवहार करो है ना कि ये कौन है, ये मैं हूं, भले आप बोलो लेकिन व्यवहार करते समय भी अपने आप को शरीर से भिन्न मान करके समझना है। तो ऐसा हो जाए तो इसको बोलते हैं विवेक, ये अनात्मा है और इससे अतिरिक्त आत्मा है, ये आत्मा अनात्मा का विवेक है। तो ये कहते हैं देखो ये सपना हो गया जागृत और सुषुप्ति के भी समझ लो, तो तीनों को जो प्रकाशित करने वाला, तीनों को जो सत्ता देने वाला है वो है परमात्मा। ये बोलते हैं देखो ये न अनुपस्थिति, जिसके द्वारा ये सारा व्यवहार जाने जाते हैं वो कौन है, तो जमराज जी बोल रहे हैं। अभी जमराज जी नहीं है, नौचिकेता के लिए वो जमराज नहीं है, नौचिकेता के लिए वो क्या हो गए, हाँ ध्यान में रखना हो गए ना, इसलिए सामने जो उपदेश करने वाला है ना उसको गलती से भी शरीरधारी नहीं समझना है, ये गलती नहीं करना है। इसलिए गुरु का स्वरूप शरीरधारी नहीं होता है, गुरु का स्वरूप क्या होता है, परमात्मा होता है। इसलिए ईश्वर गुरु रात्मेति मूर्ति भेद विभाग, इसलिए तीनों जो है ना कहने के लिए नाम अलग अलग हो गए, ईश्वर गुरु आत्मा मतलब जीवात्मा शिष्य, ईश्वर गुरु और शिष्य, ये कहने के लिए अलग अलग हो गए लेकिन तीनों का स्वरूप तो ध्यान में रखना। इसलिए गुरु का स्वरूप कोई शरीरधारी नहीं होता है, तो जिसके द्वारा ये सब सारे के सारे प्रकाशित हो रहे हैं, जागृत का व्यवहार, स्वप्न का व्यवहार, सुषुप्ति का, वो है परमात्मा। वो उनकी क्या महिमा है बोल दिया देखो, महांतम है ना, महांतम महांतम द्वितीय एक वचन, वो महान है, महान है, महान का अर्थ है यहाँ पर व्यापक, समझ में ना, ये महांत से अभी क्या हो गया अपभ्रंश महंत हो गया, महंत बोलते हैं ना, है ना, इसलिए वास्तविक महंत लोगों का भी चित्त कैसा होता है, व्यापक होता है, इसलिए संत का हृदय क्या होता है, व्यापक होता है, और जहां पर व्यापकता बुद्धि होगी ना वहां पर ही सच्चा प्रेम मिलता है, ध्यान में रखो, जहां पर परिच्छिन्नता है वहां पर सच्चा प्रेम नहीं मिलता है, और सच्चा प्रेम तो परमात्मा से ही मिलता है, और परमात्मा का साक्षात्कार जिसको हुआ है ना महंत मतलब संत को, उसी में ही सच्चा प्रेम मिलता है, बाकी में नहीं मिल सकता है। इसलिए भक्तों को कभी कभी जो है भ्रांति हो जाती है भी कि स्वामी जी मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो किसी से ज्यादा किसी से कम ऐसा नहीं होता है, इसलिए जो भी जाएगा उनको भ्रांति हो जाती है कि मेरा ध्यान जो है स्वामी जी ज्यादा रखते हैं तो ऐसा लगता है सबको ये देखो महान का अर्थ यहां पर व्यापक, व्यापक है। अच्छा व्यापक के ऊपर थोड़ा समझ लो भाई, आत्मा को परमात्मा को व्यापक कहते हैं, तो नया एक वैशेषिक लोग जो व्यापक बोलते हैं ऐसा व्यापक नहीं समझना वेदांत में, तो तार्किकों की व्यापकता जो होती है ना सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम व्यापकत्वम, वो उनका व्यापक है, सभी मूर्त पदार्थों के साथ जिसका संयोग हो उसको कहते हैं व्यापक। मूर्त पदार्थ मतलब क्रिया वाले, पृथ्वी जल तेज वायु होते हैं ना, ये होते हैं मूर्त पदार्थ, मन भी मूर्त पदार्थ, तो उसके साथ जिसका संयोग हो उसको कहते हैं व्यापक। ये आत्मा भी व्यापक है, काल भी व्यापक है, दिशा भी है, ऐसा मानते हो लोग, तो हमारे यहां ऐसा नहीं वेदांत में, वेदांत को जो वेदांत में जो आत्मा को व्यापक बोलते हैं तो आत्मा की व्यापकता कुछ अलग है, ध्यान में रखना।
तो कैसे समझना है? जैसे कि इस प्रकार समझ लो भाई, मिट्टी से बन गया हो घड़ा, मिट्टी से बन गया हो सकुरा, ग्लास, जो भी बन गया हो, है ना? तो उस मिट्टी से बनने वाले घटो घटादि में जैसे व्यापकता मिट्टी की है, तो ये व्यापकता हो गई। अरे जल का दृष्टांत ले लो, जैसे सभी तरंगों में जल की व्यापकता है, सब में जल है ना? पृथ्वी जल, तेज में देखो सभी चिंगारियां, चिंगारियां उड़ती ना अग्नि से, सभी चिंगारियों में व्यापकता अग्नि की है, चिंगारी की नहीं है, है ना? वायु का दृष्टांत ले लो, प्राण अपान ब्यान उदान समान, ये पंच प्राण हो गए, ध्यान में रखो। और एक पांच उपप्राण होते हैं, नाग कुर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय, ये होते पांच उपप्राण। तो पांच मुख्य प्राण, पांच उपप्राण, ये दस प्राणों में व्यापकता क्या है? वायु। अरे भाई सभी में वायु त्योहार क्या है? वायु का एक नाम रख दिया है ना, ऐसा है। तो सभी प्राण आदि में जैसे वायु, वायु की व्यापकता है ना? आकाश ले लो, घड़ा रख दिया, कमंडल रख दिया, ग्लास रख दिया, उसके अंदर जो आकाश हो गया ना, उसका नाम पड़ गया घटाकाश, और क्या। तो सभी घटाकाश आदि में जैसे आकाश की व्यापकता है, ये व्यापकता है, ये वेदांत की व्यापकता है। अथवा समझ लो सपना में जाओगे तो, है ना, जितनी भी वृत्तियां होती है सपना में, सबके वृत्ति में कौन है? मन ही है। इसी प्रकार जागृत में योग वशिष्ठ के अनुसार ये भी कैसा है? ये सब मानस है, मानस है, है ना? कि मनोमात्रम इदम द्वैतम, सारा का सारा द्वैत क्या है जागृत का? ये भी मन ही है, है ना? जैसे स्वप्न मन हिलता है तो ये क्या है? स्वप्न। और जागृत में मन हिले तो संसार, मन ना हिले सुसुप्ति में तो कोई संसार नहीं है। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आती ना, इसलिए मांडुक्य है योग वशिष्ठ, सबकी बस की बात नहीं। भाई सपना भले ही मिथ्या हो गया, जागृत कैसे मिथ्या होगा? बार बार चिंतन करोगे तो ये बात पकड़ में आती है, आ जाएगी। ऐसा तो ये ऐसा मन से कि यहाँ पर सबको समझ में आ जाएगा। संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। तो देख लो, तो सभी वृत्तियों में जैसे मन ही है ना? अच्छा, लेकिन विचार करने पर भी ध्यान में रखो, ऐसी व्यापकता भी आत्मा की नहीं होती है, ऐसी व्यापकता भी आत्मा की नहीं होती है ना? क्यों? आत्मा ना व्यापक है ना व्याप्य है, ध्यान में। ईश्वर को भाई इसलिए कारण बोलते हो, जगत को जब कार्य बोलते हो, ध्यान में ना। आ जगत यदि ब्रह्म से भिन्न हुआ ही नहीं, हो गया ना, फिर आत्मा किसका कारण बनेगा? सर्वम खलविदम ब्रह्म, जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ गई, उसके लिए ब्रह्म कारण नहीं हुआ हो, ध्यान में ना। कार्य के दृष्टि से ईश्वर कारण होता है, हो गया ना। सपनों का पुत्र के दृष्टि से स्वप्न में माता बैठेंगे आप, और उड़ गए तो ना पुत्र है ना माता है, कुछ भी नहीं, हो गया ना। ये समझना है यहाँ पर। तो जागृत में सो करके आप सपनों को देख रहे हो, और जागृत में उड़ जाएंगे तो स्वप्न का पुत्र भी खत्म हो गया और स्वप्न की माता भी खत्म हो गई, हो गया ना भाई। लेकिन जिसमें सो करके जागृत को देख रहे हो, उसमें जग जाओगे तो जागृत खत्म हो जाएगा, ध्यान में ना। इसलिए जागृत के दृष्टि से ये जगत हो गया कार्य, और जागृत के दृष्टि से जगत ये परमात्मा हो गया कारण, ध्यान में ना। तो उस ब्रह्म में सो करके आप ये कल्पना कर लिया कि जगत कार्य है, जन्मादि संयतः, और परमात्मा क्या है? कारण है। तो उस ब्रह्म में जब जग जाओगे जगना मतलब ज्ञान हो जाना। तो जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो जगत नहीं दिखेगा, फिर जगत रहेगा नहीं, फिर धन में है ना, ऐसा समय ना। तो जगत जब रहा नहीं मतलब ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं, रहा नहीं मतलब ये समझ लो। कभी कभी लोगों को भ्रांति हो जाती है, अरे भाई ज्ञान हो जाएगा तो जो है कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं समझना है। दाल रोटी भात सब समान हो जाएगा ज्ञानी के लिए, ऐसा नहीं समझना है। मान लो ज्ञान से पहले महात्मा जो है जो भी हो है ना, क्या कैसे खा रहा है भाई, चावल में दाल को मिलाकर खा रहा है कि नहीं। और ज्ञान हो जाएगा तो चावल चावल को पहले खा लेगा, दाल को बाद में पिएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये ज्ञान का फल नहीं कि सब बराबर हो गए। बड़े विलक्षण है। और ट्रेन में जाते हैं तो हाथ दिखा, हाथ बढ़ा देते हैं लोग, सामने थोड़ा हाथ देख लो, ये भी हम ये सब नहीं आता तो क्या महात्मा है आप, ऐसा बोलते हैं, महात्मा ही नहीं है आप। इसी बगैर किसको ज्ञान हो गया तो सर्वज्ञ हो जाएगा, ये नहीं, ध्यान में रखना हो, ज्ञान का फल सर्वज्ञता नहीं होता है, ये ज्ञान का फल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया किसी को, हाँ जो है मेरी नानी के नानी का नाम क्या है बताओ, तो बता देगा कोई। इसी प्रकार जो रावण के नानी का नाम क्या हो, तो नहीं बता सकता है। अच्छा चलो बता भी दिया तो क्या मिलेगा आपको, बता भी दिया और बताना भी कोई ज्ञान का फल नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का फल सर्वज्ञता नहीं होती है, ध्यान में रखना। ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है, सर्वज्ञता तो है, लेकिन कैसी सर्वज्ञता, सर्व चाशो ज्ञ, ये सर्वज्ञ होता है, धर्म है ना। एक सर्वज्ञता क्या है, सर्वम जानाती थी सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञता हो गई, ये सबको जानेगा। और दूसरी सर्वज्ञता क्या है, सर्व चाशो ज्ञ, सर्वरूप हो गया परमात्मा, मतलब परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान का फल होता है। इसलिए आजकल चमत्कार को नमस्कार होता है ना, जैसे कोई कोई सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं योग से तंत्र से, सिद्धि को प्राप्त कर लिया, जो साधक आएगा ना माथा टेकने के लिए हो गया ना, तो बिना पूछे बोल देंगे तुम वही हो ना, है ना, नाम बता देंगे पहले से, अच्छा इसलिए आए हो ना आप, तो वो तो फिर जो है चमत्कार हो गया ना भाई, देखो मैंने बिना बताया तब भी इनको समझ में आ गया, इसका मतलब यही ब्रह्म ज्ञानी है। ये ब्रह्म ज्ञान का फल नहीं है, समझ कर रखो। इसलिए ये हम कह रहे थे कि आत्मा को जब व्यापक बोलते हैं, ऐसी व्यापकता भी नहीं है, ये जगत परिचिन्न है, व्याप्य है, इसकी दृष्टि से ब्रह्म को बोल दिया व्यापक, जगत कार्य है इसकी दृष्टि से ईश्वर को बोल दिया कारण, वास्तविक कारणता जैसे ब्रह्म में नहीं है, इसी प्रकार वास्तविक व्यापकता ब्रह्म में भी नहीं है, ये महानतम का अर्थ। तो व्यापक हो गया और सबका वो अधिष्ठान है, विभु का अर्थ अधिष्ठान, यद्यपि विभु का अर्थ भी कहीं कहीं व्यापक होता है, ध्यान में है ना, लेकिन महांत का अर्थ व्यापक बोल दिया, इसलिए विभु का अर्थ लेंगे अधिष्ठान। जैसे ऐसा समझ लो जैसे एक ही पर्दा जो है ना अनेक चित्र के रूप से दिखता है, भाई सिनेमा के पर्दा जो है, टीवी का जो पर्दा है, वो पर्दा में अनेक चित्र दिखते हैं, वो पर्दा ही अनेक चित्र के रूप से दिखता है कि नहीं, एक पर्दा से भिन्न है ही नहीं। तो एक पर्दा जैसे विविध रूप से भाषे, इसी अगर एक परमात्मा जो है ना माया को लेकर अनेक रूप से बसता है, इसलिए विभु का अर्थ हो गया, हो गया ना, इसलिए विविधे न भवंती है ना अस्मात इति विभु, ये देखो अनेक रूप से ये परमात्मा ही जगत के रूप से भास रहा है, इसलिए हो गया विभु का अर्थ। ऐसा परमात्मा कौन है, ऐसा नहीं समझना कि ऐसा परमात्मा कोई वैकुंठ में बैठा है, वो परमात्मा तो अपना स्वरूप है, इसलिए परमात्मा का वास्तविक स्वरूप का ये साक्षात्कार करना हो तो आत्मा रूप से करना होगा। इसलिए यहां भगवान भाष्यकार लिखते हैं किसके ऊपर, कहते हैं उस आत्मान मत्वा, मत्वा का साक्षात्कार करके, तो कैसा साक्षात्कार, कहते हैं साक्षात अहम अस्मि परमात्मा, वो परमात्मा तो मैं ही हूं, मेरा स्वरूप है, इसको कहते हैं साक्षात अपरूप से। इसलिए ब्रह्म का साक्षात्कार आत्म रूप से होता है, ये घड़ा है ये पुस्तक है ऐसा नहीं होगा, है ना, ये अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष हो गया। अरे साक्षात अपरोक्ष ज्ञान से ही, देखो ये यहां तक जाना है साधक को, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान से ही ये जगत भ्रांति की निवृत्ति होगी, है ना। यदि परोक्ष भ्रम हो तो परोक्ष ज्ञान से हट जाएगा, वहां पर सर्प है ऐसा आपने सुना, ये तो परोक्ष हुआ ना, तो परोक्ष ज्ञान से हट जाएगा। लेकिन सामने यदि आप देखते हो कि रस्से में सर्प को, तो ऐसा बोलने मात्र से नहीं हटेगा वो भ्रम, हो गया ना। जब तक टॉर्च लगा करके नहीं देख लेते हो रस्सी को, अरे रस्सी ही है ऐसा अपरोक्ष ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक सर्प भ्रम की भ्रांति नहीं जाएगी। इसी प्रकार में अमुक हो अमुक हो ये जगत सत्य है, ये अपरोक्ष भ्रम हो रहा है, इसलिए अपरोक्ष भ्रम के निवृत्ति दही परोक्ष ज्ञान मात्र से नहीं होगी, अपरोक्ष ज्ञान से। दोनों का फल अलग अलग भी समझ लो, तो परोक्ष ज्ञान का फल होता है असत्व आपादक भ्रम की निवृत्ति, असत्व आपादक भ्रम आवरण की निवृत्ति हो गया ना, और अपरोक्ष ज्ञान का फल क्या होता है, अभान आपादक आवरण की निवृत्ति। इसलिए यहाँ पर अभान आपादक आवरण की निवृत्ति के लिए ये भगवान भाष्यकार ने बोल दिया, वो जो परमात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप, वो मेरा स्वरूप है। तो क्या होगा इसका फल, वास्तविक फल मोक्ष। अब मोक्ष दूसरा कुछ नहीं है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, उस परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाना, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम, पुनरावर्तन नहीं और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, ये बोल दिया। देखो धीरा हा ना सोचते, धीरा क्यों कह दिया, धीर तो बनना ही पड़ेगा, है ना। हाँ धीर बनना चाहिए, ऐसा बोलने से नहीं होता है अरे भी औसत खाना चाहिए, खाना चाहिए बोलने से नहीं होगा, औसत खाना पड़ेगा, पथ्य का पालन भी करना पड़ेगा, हो गए कि नहीं, ये होता है। इसलिए धीर बनना चाहिए ऐसा बोलने से नहीं होगा, है ना। तो जैसे कि समझ लो भाई बिजली है ना, तो उसको छूने से तो झटका मारेगा, मारेगा ना, अच्छा। लेकिन जो बिजली का काम करने वाला है, समझ करके देखो, जो बिजली का काम करने वाला है ना, तो वायरिंग करने वाला है, और बिजली का इंजीनियर भी क्यों ना हो, वो यदि छुएगा तो उसको झटका मारेगा कि नहीं, भाई इंजीनियर है तो कैसे मारेगा उसको, है ना, तो मारेगा वो कोई भी छुए वो अपना काम तो करेगा ही करेगा, जान माया। ये माया रूपी जो करंट है ना, ये किसी को छोड़ती नहीं है जो अज्ञानी है, जो शास्त्र का ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, उसको ये माया झटका मारेगी ही मारेगी, हो गया कि नहीं। आज जो व्याख्यान करने वाला हो वेदांत का ब्रह्म ज्ञान का व्याख्यान करता हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, तो इंजीनियर हो गया ना ये वेदांत का व्याख्यान कर रहा था, इंजीनियर हो गया। तो ये भी यदि माया को छुएगी तो माया छोड़ेगी नहीं ऐसा समझ के देखो। इसलिए धीर बनना चाहिए बोलने से नहीं होगा, धीर तो बनना ही पड़ेगा। तो श्रुति कह दिया देखो, धीर बनना चाहिए, धीर को ही ज्ञान होता है, धीरह न सुचते, ये ज्ञान का फल हो गया दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। ये समझ लो, एक तो निवृत्ति है और एक है आत्यंतिक निवृत्ति, समझ में ना। जब तक ज्ञान ना हो तब तक आत्यंतिक निवृत्ति ना होती है, कारण रहते हुए भी कभी कभी दुख की निवृत्ति हो जाती है कि नहीं। जैसे रसगुल्ला खा लिया मान लो, हाँ तो दुख की निवृत्ति तो हुई थोड़ी सी, सुख मिला कि नहीं। हाँ दूसरे क्षण में फिर सुख फिर दुख आ जाता है, हो गया कि नहीं। ठीक इसी प्रकार सुषुप्ति में जाते हो भाई, दुख की निवृत्ति तो होती है लेकिन आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती। अज्ञान वहां पर बैठा है ना, फिर अज्ञान बैठा है लेकिन विक्षेप न होने से आपको लगता है कि सुख है, हो गया ना। ठीक इसी प्रकार दान पुण्य थोड़ा कर लेते तो पुण्य होने से सुख मिलता है, लगता है कि यार भाई तो सुख ही सुख है, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा फिर दुख दौड़ करके आ जाता है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति तब कहेंगे जिसमें दुख की निवृत्ति होती है उसमें दुख का हेतु ना रहे। कि सुषुप्ति में दुख की निवृत्ति तो हुई लेकिन दुख का हेतु वहां पर फिर बैठा है, अज्ञान बैठा है, तो ये ज्ञान का फल नहीं है। अज्ञान का फल आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। अच्छा, उस परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। आगे बता रहे हैं पंचम मंत्र में, लेकिन इसका विचार कल करते हैं क्योंकि आरंभ करेंगे तो समय हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।